एजाज खान अपने बेटे फैज खान से मिलने हॉस्पिटल पहुंच चुका था। छवि सिंघानिया वहीं पर मौजूद थी। फैज का वहां ट्रीटमेंट शुरू हो गया था और उसे उस हाल में देखकर एजाज खान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके और भी बेटे थे, लेकिन फैज सबसे बड़ा और लायक बैठा था। उसके इस हाल में आने की वजह से उसे काफी नुकसान भी होने वाला था। छवि सिंघानिया ने एजाज खान की तरफ देखकर फैज के बारे में बताते हुए कहा, डॉक्टर के मुताबिक ये सिर्फ देख और सुन सकते हैं, बाकी ये कब तक ठीक होंगे इसके बारे में वो खुद भी नहीं बता सकते। डैड, हमें भाई को किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। आई नो ये मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पर हम भाई को दुबई के हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और भी इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाएंगे ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वहीं उनके पास खड़ी फैज की छोटी बहन बोली। वो उम्र में लगभग 30 के करीब थी। दिखने में बिल्कुल सफ़ेद, ग्रे कलर की आईज़ और चेहरे पर डार्क मेकअप के साथ उसने वाइट कलर का फ्रॉक पहना हुआ था। एजाज खान ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, नहीं, इसका ट्रीटमेंट यहीं से होगा ही ना। अगर हम इसे दुबई लेकर गए तो पूरे माफिया में ये खबर फैल जाएगी। मैं किसी भी तरह से फैज की बदनामी नहीं चाहता। ये जिसने भी किया है उसे इसकी सज़ा मिलकर रहेगी। उसकी बेटी का नाम हीना था। उसने खान की बात पर सहमति जताई और फिर छवि की तरफ देखकर पूरे एटीट्यूड से कहा, क्या तुमने यहाँ की फुटेज निकलवाई? पता तो चले कि किस में इतनी हिम्मत आ गई जो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करके मौत के मुंह में खुद चलकर आया है। यहाँ का स्टाफ पहले से ही फुटेज निकलवा चुका है, मैंने भी देखी थी। उनके मुताबिक मिस्टर खान ने कोई स्ट्रांग ड्रग लिया है, रिपोर्ट में भी यही आया था, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई है। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें पुलिस बुलाने से रोका था। मैं जानती हूँ ये मामला आप हैंडल कर लेंगे, बस मुझे आप ही के आने का इंतज़ार था, छवि ने धीमी आवाज़ में कहा। आरफ का प्लान काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल हुआ था। उनकी बातें सुन रहे फैज का बीपी हाई होने लगा और पास में मौजूद मशीन में ज़ोर से आवाज़ आने लगी। फैज के डॉक्टर रूम के बाहर ही थे। जब उन्होंने मशीनों की आवाज़ सुनी तो वो दौड़कर अंदर आए और तेज़ आवाज़ में कहा, पेशेंट इज़ नॉट वेल, वो आपकी बात सुन सकता है। आप उनके सामने कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिसे सुनकर उन्हें गुस्सा आए। प्लीज़ आप इन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। वी हैव टू ऑपरेट हिम। कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तुम चुपचाप अपना काम करो, हीना ने तेज आवाज में कहा। फैज की फैमिली बाहर जाने के बजाय वहीं पर खड़ी डॉक्टर को देख रही थी। डॉक्टर ने फैज को एक इंजेक्शन दिया और कुछ दवाइयां दी, जिसके बाद उसका बीपी काफी हद तक कंट्रोल हो चुका था। अपना काम करने के बाद डॉक्टर फिर बाहर चला गया। इस पूरे मामले को गौर से देखते हुए खान ने गंभीर आवाज में कहा, फैज को गुस्सा आ रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि जो जैसा दिख रहा है वो वैसा बिल्कुल नहीं है। हमारे आदमियों को पूरे मुंबई में एक्टिव कर दो। हॉस्पिटल में इसकी सेफ्टी में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उनकी बात सुनकर फैज खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो एक VIP रूम था, इस वजह से वहां उन लोगों के बैठने के लिए बेड और काउच भी लगा हुआ था। वो फैज से थोड़ा दूर बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं आरव आयु को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। गाड़ी से बाहर निकलने से पहले आरव ने फिर से आयु के चेहरे पर मास्क लगा दिया। आयु के एक्सप्रेशंस देखकर आरव समझ गया था कि वो इन सबसे काफी इरिटेट हो रही है। उसने आयु को परेशान करने के लिए हंसते हुए कहा, मेरी मिसेस खुराना को मेरे अलावा और कोई नहीं देख सकता। वैसे आइडिया काफी अच्छा है, जब तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो इसी तरह मास्क लगाकर रखना, फिर किसी की बुरी नज़र भी नहीं लगेगी और कोई तुम्हें उस नज़र से देखेगा भी नहीं। अपना ये बकवास सा लेक्चर देना बंद करो, तुम सब कुछ जानते हो ये गलत है, तब भी खुद को जस्टिफाई कर रहे हो, आयु ने आइज रोल करके कहा और फिर अपना मास्क निकाल दिया। फिर उसने आरव का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके होठों पर हल्का सा किस करते हुए कहा, आई विल गोना मिस यू। आरव ने स्माइल करते हुए जवाब में कहा, जानता हूँ, बट डोंट वरी, ज़्यादा टाइम तक तुम्हें खुद से दूर नहीं रखूंगा। अयान को बोलना तुम्हें खुराना इंडस्ट्रीज में ड्रॉप करे। अपनी बात कहकर आरव ने आयु के होठों को कैप्चर किया और उसे किस करने लगा। हॉस्पिटल आने के बाद भी वो दोनों लगभग 10 मिनट तक गाड़ी में थे। अयान को आयु की जरूरत थी, इसलिए उसने फिर उसे कॉल किया तो उन दोनों का ध्यान टूटा और फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। बस थोड़ी सी देर, आयु ने ब्लश करते हुए कहा और अपना मास्क फिर से पहन लिया। हाँ, बस थोड़ी सी देर, आरव ने जवाब दिया और फिर आयु के लिए दरवाज़ा खोला। आयु को बाय बोलकर आरव वापस चला गया था, तो वहीं आयु भी हॉस्पिटल में आते ही सीधे अयान के केबिन में गई। एक पल के लिए अयान भी आयु को देखकर हैरान हुआ, फिर उसने मास्क निकाला तो अयान ने आइज रोल करके कहा, भाई कुछ ज़्यादा ही दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ये लेंसेज लगाने की क्या ज़रूरत थी, तुम पर बिल्कुल सेट नहीं हो रहे हैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, चलो इस समय टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं चेंजिंग रूम में जा रही हूँ, उसके बाद डायरेक्ट OT में मिलते हैं। मैंने तुम्हारी भेजी हुई रिपोर्ट्स रास्ते में पढ़ ली थी तो मैं इसके लिए अच्छे से तैयार हूँ, आयु ने जवाब में कहा। वो जाने के लिए मुड़ी, तभी अयान बोला, तुम चाहो तो हमारे केबिन का वॉशरूम यूज़ कर सकती हो। अयान ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि पिछली बार फैज ने आयु के साथ वो सब चेंजिंग रूम में ही किया था। आयु अयान की तरफ पलटी और सिर हिलाकर कहा, कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के चलते फिजिकल वीक हूँ, लेकिन मेंटली नहीं। उसने मुझे मॉलेस्ट किया, उसकी सज़ा आरव उसे दे चुका है। आई एम प्राउड ऑफ यू, अयान ने मुस्कुराकर कहा, तो आयु भी स्माइल करते हुए वहां से चली गई। आयु ने चेंज किया और फिर से मास्क लगा लिया था। वहां आते ही फैज ने उसके साथ जो भी किया था, आयु के दिमाग में उसकी यादें ताज़ा होने लगी। वो स्ट्रांग थी इसलिए घबराई नहीं, लेकिन आयु के दिमाग में अभी भी ये सवाल था कि आरव ने फैज के साथ क्या किया होगा। आई नो तुमने मुझे कोई भी ऐसा वैसा करने से मना किया है, खासकर उस इंसान के पास जाने से, लेकिन मेरा हक बनता है कि मैं जानूं कि तुमने उसके साथ क्या किया है। आई होप कि इस गेटअप के साथ वो मुझे पहचान नहीं पाएगा और ना ही उसकी हालत इस वक्त ऐसी होगी कि वो मुझे पहचान सके, आयु ने अपने मन में कहा। आरव और अयान के मना करने के बाद आयु फिर से फैज के वार्ड की तरफ जाने लगी। इस बार उसका रूम बदल दिया गया था, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि उसके रूम का पता कैसे लगाना है। आयु ने तुरंत अपने मोबाइल में हॉस्पिटल के पेशेंट से जुड़ी हुई रूम डिटेल्स निकाल ली और फिर फैज के रूम की तरफ चली गई। उसने अभी भी मास्क लगा रखा था और लेंसेज की वजह से पहचान में नहीं आ रही थी। आयु कुछ रिपोर्ट्स के साथ फैज के वार्ड में पहुंची। वैसे भी सुबह से उसके चेकअप के लिए कभी कोई तो कभी कोई आ ही रहा था, इसलिए उन्हें शक नहीं हुआ। जैसे ही आयु फैज के वार्ड में पहुंची, उसकी नजर उसके ऊपर पड़ी। समझ गई थी कि फैज की बॉडी पैरालाइज हो गई है। रूम के बाहर अटेंडिंग डॉक्टर का नाम लिखा हुआ था, जो पैरालिसिस स्पेशलिस्ट थे। उसे उस हालत में देखकर आयु हैरान रह गई। वहीं आयु को देखते ही हीना ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई, इनकी ड्रिप खत्म हो गई है, आईवी ठीक से नहीं लगी हुई है, इसे चेंज कर दो।
आयु बस फैज को देखकर वहां से जाना चाहती थी, लेकिन हीना ने उसे काम बता दिया तो मजबूरन उसे अंदर जाना पड़ा। आयु फैज के पास आकर हीना का बताया हुआ काम करने लगी है। आयु को देखते ही फैज एक टक उसे देखने लगा। भले ही उसने मास्क और लेंसेज लगा रखे थे, लेकिन उसकी परफ्यूम की स्मेल से वो उसे पहचान गया था। उसने आयु के हाथ की तरफ देखा तो उसने अपनी रिंग फिंगर में एक रिंग पहन रखी थी, जो आरव ने उसे पहनाई थी। फिर उसकी नज़र आयु के गले पर पड़ी। आज भी आयु ने अनु और आरव का पेंडेंट एक साथ पहन रखा था। आयु को वहां देखते ही फैज ने अपने मन में कहा, तो आप यहां ये देखने आई हैं कि आपके हस्बैंड ने हमारे साथ क्या किया है? इतनी हैरान क्यों हो रही हैं आप? आपके कदम यहां तक आए हैं, इसका मतलब आप नहीं जानती कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है? देखा जाए तो गलती हमारी ही थी, हमने आपको सजा देने में जल्दबाजी कर दी और उसकी सजा भी हमें मिल गई। आयु के वहां होने से फैज की फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो उसी तरह से बात कर रही थी। अचानक एजाज खान को कुछ याद आया तो उसने छवि की तरफ देखकर पूछा, वो डॉक्टर भी इसी हॉस्पिटल में काम करती है ना, आरव खुराना की पत्नी? छवि ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। वही उसके हाँ कहते ही हीना ने कहा, तो फिर देर किस बात की है, वो उस रोहन चौहान से मिली हुई थी और हमारे रूल्स के हिसाब से हमें उस लड़की को अब तक मार देना चाहिए था। उस इंसान से जुड़े सभी लोग मर चुके हैं सिवाय उस डॉक्टर के, आप कहो तो मैं ये काम कर सकती हूँ। उनकी बातें सुनकर आयु के हाथ रुक गए और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वही फैज को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी छवि ने मामले को संभालते हुए कहा, हमें इस बारे में सोच लेना चाहिए, मिस्टर खान उसको लेकर डिसीजन लेने वाले थे, उनके होश में आने से पहले हमने जल्दबाजी में उसे मार दिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भाई को होश कब तक आएगा इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते, इवन डॉक्टर को भी डाउट है, कहीं उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम में ना आ जाए, हीना ने जवाब दिया। उनकी बातें सुनकर आयु को डर लग रहा था। हड़बड़ाहट में उसने इंजेक्शन फैज के ऊपर गिरा दिया था। उसने जल्दी से इंजेक्शन उठाया तो उसका हाथ फैज के सीने को छू गया। आयु की इस हरकत पर फैज की फैमिली में से उसे कोई डांटता, उससे पहले अटेंडिंग डॉक्टर वहां आ गया था। आयु की नजरें झुकी हुई थीं, फिर भी उसने पहचानते हुए कहा, आप डॉक्टर ओबेरॉय हो ना, आप यहां पर क्या कर रही हैं? डॉक्टर अयान सिंघानिया सर्जरी के लिए आपका वेट कर रहे हैं। वो एक्चुअली मैं इधर से गुजर रही थी तो इन्होंने मुझे हेल्प के लिए बुला लिया, आप कर दीजिए मैं जा रही हूँ, आयु ने धीरे से जवाब दिया। आयु की आवाज़ से ना केवल फैज बल्कि छवि भी उसे पहचान चुकी थी। वो हैरानी से आयु को जाते हुए देख रही थी। तभी उसने फैज के चेहरे की तरफ देखा, जिसने आंखों के इशारे से उसे चुप रहने को कहा। आयु जल्दी से वहां से चली गई। उसके जाते ही डॉक्टर ने फैज का फिर से चेकअप किया और कहा, स्ट्रैच, पूरे दिन में इनका टेम्परेचर और बीपी हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा था और अचानक ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। आप उनके आसपास पॉजिटिव माहौल बनाकर रखिए, अगर ऐसा ही रहा तो इन्हें ठीक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले तो नॉर्मल नहीं था, उस डॉक्टर के आने से ही हुआ था। मुझे लगता है ये सब उस डॉक्टर का ही कमाल है। क्या आप उसे फैज का अटेंडिंग डॉक्टर बना सकते हैं? छवि ने डॉक्टर की तरफ देखकर पूछा। वो जानती थी कि आयु के आसपास होने की वजह से ही फैज में पॉजिटिव चेंज आए थे। वो डायरेक्ट खान फैमिली को सच नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने बहाना बनाया। अटेंडिंग डॉक्टर ने नाम ही सिर हिलाते हुए कहा, आई एम सॉरी मैम, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो नर्स नहीं है और ना ही पैरालिसिस स्पेशलिस्ट, वो एक न्यूरोसर्जन है, तो उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। अपनी बात कहकर डॉक्टर वहां से चला गया, जबकि आयु गुस्से से उस रूम से बाहर निकल रही थी। आज उसके सामने एक साथ कई खुलासे हुए थे। आयु ने फैज खान को एक नॉर्मल पेशेंट समझा था। उसे पता चल गया था कि फैज खान एजाज खान से जुड़ा हुआ है, वही माफिया जिसके चंगुल में रोहन ने उसे फंसाया था। तो अब तक मेरी जान इसलिए बची हुई है क्योंकि एक सनकी माफिया का दिल मुझ पर आ गया है। सीरियसली, तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला कि ये आदमी कौन है? अयान, तुम्हारी मॉम अंडरवर्ल्ड के लिए काम करती है, तभी तुम उनसे नफरत करते हो और मुझे उनसे दूर रहने के लिए कहा। आखिर चल क्या रहा है मेरी लाइफ में? मेरा एक बेस्ट फ्रेंड जो मुझे हर बात बताता था, उसकी मॉम अचानक से कोई अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई शख्स निकलती है। मेरा हस्बैंड, जिसे मैंने एक अजीब बिजनेसमैन समझा था, वो भी माफिया के लिए काम करता है। अरे, ये मेरी लाइफ है या फिर कोई कहानी जहाँ सब माफिया से जुड़े हुए हैं? आयो गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर आ रही थी। उसे आरव और अयान से काफी कुछ पूछना था, लेकिन ये उसका सही टाइम नहीं था। फिलहाल उसे सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाना था। उसने अपने दिमाग को शांत किया और अयान के साथ सर्जरी हैंडल करने के लिए निकल गई। सर्जरी लंबी चली थी। लगभग 6 घंटे बाद वो लोग उस सर्जरी से फ्री हुए थे। आयु अब 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। सर्जरी के बाद चेंज करते ही आयु ने अयान की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, मुझे अभी के अभी खुराना इंडस्ट्रीज लेकर चलो। क्या बात है, क्या ज्यादा ही टाइम ले लिया मैंने जो अपने मिस्टर खुराना के बिना बेकरार हो रही हो? अयान ने उसे परेशान करने के लिए कहा। आयु इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे बाहर जाने लगी। वही उसके तेवर देखकर अयान समझ गया था कि उसकी और आरव की बैंड बजने वाली है। ... आयु भी गुस्से में आती है, अब इस बार आरव को भुगतना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। कमेंट आफ्टर रीडिंग।